ओम शांति सभी का। डॉक्टर साहब
ओम शांति।
आज हमें बहुत खुशी हो रही है, एक तरफ डॉक्टर साहब है एक तरफ पेशेंट, क्योंकि 2008 में मुझे कैंसर का जो प्रॉब्लम हुआ था तो उस समय इन्होंने ही मेरा इलाज किया, इन्होंने ही उमंग उत्साह किया दिया और यहाँ से वहाँ तक लेके पूरा ट्रीटमेंट। और फिर देखो डॉक्टर साहब कैसे लग रहा है, एक पेशेंट आपका इंटरव्यू ले रहा है।
आपका प्यार है इसकी वजह से।
ये भी अपना सौभाग्य समझता हूँ कि डॉक्टर तो है ये हमारे, लेकिन सबसे बड़े मेरे बड़े भाई है, क्योंकि जब बीमार भी नहीं हुए थे तभी से हम उनको जानते थे, मिलते थे और बहुत ही मतलब अच्छा रिलेशन शुरू से रहा। मुझे याद है जब पहली बार वो आए थे और इनका जन्म भी मैं समझता हूँ गुलजारदादी के थ्रू हुआ है, तो बहुत महान विभूति है। और इनका जन्म हुआ और इनको सब दादियों की सब दादाओं की सब प्यार पालना सब कुछ, इनको थोड़े समय में बहुत कुछ मिला इनको। तो डॉक्टर साहब का जो पहली मुलाकात हुई थी हमारी, मुझे याद है वो पांडव भवन में आए थे, सुखधाम में रुके थे, तो शशि बहन ने मुझे कहा कि जाओ डॉक्टर साहब को कहो कि सुबह थोड़ा मेडिटेशन का सेशन है वो करना चाहते हैं। तो उन्हें कहा क्या मेडिटेशन, मुझे अभी वॉकिंग जाना है नक्की झील का। तो फिर वो और उनकी धर्म पत्नी शिरीन बहन दोनों वॉकिंग करने गए। फिर मैं दोबारा शशि बहन ने भेजा कि नहीं मेडिटेशन नहीं, थोड़ा बातचीत करना है आपस में, मेल जो मतलब जैसे बोलते हैं ना बातचीत करना है। तो हाँ इन्होंने सोचा होगा कि वो पेशेंट बिशेंट होगा उससे बातचीत। तो फिर उनका और सूरज भाई का पहला जो लेसन था आपस में मिलने का हुआ। और फिर तो आगे बढ़ते 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 बाबा ने कहाँ पहुँचा दिया, और हमारा इतना बड़ा संस्था का बहुत बड़ा हिस्सा बन के सेवाएं करें। तो सबसे ज़्यादा डॉक्टर साहब मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हम दोनों एक साथ बैठ के बातें करेंगे। तो मैं डॉक्टर साहब से पहला प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आपके बचपन व माता पिता के बारे में थोड़ा बताइए, जिन्होंने आपको डॉक्टर तक पदवी तक पहुंचा दिया, इतना हिम्मत दिया, और ये जो प्रवास है डॉक्टर बनने तक बचपन से, थोड़ा सा शॉर्ट में आप बताइए।
जरूर। मेरे पिताजी बिजनेसमैन थे, हमारा उस समय में 1940 के जमाने में विलायती कापड़ का बिजनेस था, मुलजी जेठा मार्केट के अंदर। उसके बाद में हमारे काफी प्रॉपर्टीज थी बंबई के अंदर, तो मेरे पिताजी को शायद उस समय कुछ भी छाती में फेफड़े में होता था तो टीबी की शिकायत नहीं होती, तो भी मान लेते थे टीबी है, तो उन्होंने सब बिजनेस छोड़ दिया और मेरी हम विले पार्ले बंबई में रहते थे। और हमारा घर एकदम छिवट के हिस्से में था, विले पार्ले और सांता क्रूज के बीच, तो उस हमारे घर के बाहर सब पैडी फील्ड्स थे, तो एकदम खुले में रहते थे हम। बड़ा बगीचा था, बहुत झाड़ थे, तो मैं झाड़ पे भी चढ़ सकता था, सरगवा के सिंह हो, चीकू का झाड़ हो, कोकोनट के पेड़ भी चढ़ सकता था बचपन में ऐसा ट्रेनिंग। और जो विले पार्ले के अंदर मैं जहाँ रहता था वो एक गुजराती साहित्यकार और स्ट्रगल, हमारी फ्रीडम स्ट्रगल के जो लीडर्स थे वो काफ़ी रहते थे। और माताजी बहुत प्यार करती थी, मैं अकेला एक बच्चा था और उनको बहुत समय के बाद में मेरा जन्म हुआ था, तो बहुत ख्याल रखती थी मेरा। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो पिकनिक पे काफ़ी जाते थे हम, छोटे थे 6-7-8 साल 10 साल के, तो माताजी साथ में चलती थी, टीचर्स भी कहती आप चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इस तरह से जहां भी पिकनिक पर जाते थे माता जी जाती थी शुरू शुरू में, फिर 10 साल के बाद में तो कुछ पर बहुत प्यार करते थे। मैं एक एग्जांपल बताऊं, मैं MBBS के आखिरी साल में था तो 6 महीना एग्जाम के टाइम पे मैं हॉस्टल में रहता था, तो मैं KEM अस्पताल और SGS मेडिकल कॉलेज वहाँ का जाना माना अस्पताल है वहाँ रहता था। और माताजी, मैं घर मिलने जाता नहीं था, उस समय टेलीफोन्स भी नहीं थे, बम्बई में टेलीफोन लेना था तो 10 साल लगता था, तो न तो हमारा कम्युनिकेशन वॉज, वो डब्बा आता था भोजन का उसके अंदर चिट्ठी आती थी, उस तरह से हमारा कम्युनिकेशन चलता। तो हफ्ते में 2 बार वो मुझे मिलने आती थी, तो साथ में कपड़े लेके आती थी, सब धुलाई करके इस्त्री करके, और साथ में नाश्ता लेके आती थी कि मुझे अच्छा लगे, घर का खाना मिले। तो इस तरह से बहुत प्यार करते थे। और जब मैं सर्जन हुआ तो उसने मुझे देखा, सर्जन क्या आस्ते आस्ते ऊपर जाते हुए, तो बहुत खुश होती थी, लेकिन कहती थी कि तुम घर में आते हो बताते नहीं हो किसका ऑपरेशन किया आपने, क्योंकि हमारे जो समाज के कुछ जाने माने लोगों का ऑपरेशन करते थे तो उनको बाहर से पता चलता था, तो बोला आपने मुझे बताया नहीं, मैंने कहा मैं भूल गया। तो इस तरह से बहुत बहुत प्यार करते थे और बहुत अच्छे संस्कार, धार्मिक संस्कार दिए उन्होंने। उनकी माता जी, हमारी जो नानी थी वो बहुत धर्मिष्ठ थी और वो खद्दर पहनती थी। उसने एक दिन हाथ जोड़ दिया, कोई महाराज साहब ने बताया, हम जैन हैं तो स्थानक के अंदर कोई महाराज साहब ने बताया होगा कि गांधी बापू की ये जो लड़ाई सत्याग्रह की लड़ाई चलती है तो हमें उनको खादी तो पहनना चाहिए। तो मेरे जो नाना थे वो नवाब के राज में काफी ऊपर के होते पे थे, एक थे जो चीफ मैजिस्ट्रेट थे जो फांसी भी लटका सकते थे, उसका इतना वहाँ उस समय इतना मान था। तो उनको तो बहुत गुस्सा आया कि ऐसे काम करती हो कि हम नवाब के साथ काम करते हैं, आप एक खद्दर पहनने की चालू कर दिया। उन्होंने कहा, मैंने तो हाथ जोड़ दिया, अभी बदली नहीं हो सकता है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। तो हम जब छोटे थे तो छुक छुक गाड़ी होती थी, कोलसे से भर जाते थे, बम्बई से जब जाते थे साल में एक बार तो वो हमको नहलाती थी बच्चे थे तो, और पानी बहुत छोटा तबाक के अंदर लेती थी, शायद 2-3 लीटर होगा, और साबुन बहुत कम लगाती थी, और एक हमारे गुजरात में जामरा कहते हैं पत्थर होता है उससे शरीर घसती थी, तो हमें अच्छा नहीं लगता था, पानी तो बहुत इतना कम लेती है। तो बोलती थी, देखो पानी सब रास्ते पे जाता है, क्योंकि उस टाइम ड्रेनेज तो था नहीं और वहाँ हमारे जीव जंतु होते हैं, हिंसा होती है, कीचड़ होता है, तो फिर हम लोग को पता चला कि ऐसे पानी का दुर्व्यय नहीं करना चाहिए। तो अब तो पर्यावरण की बात आके खड़ी रहती है। और उस समय पालनपुर के अंदर जहाँ मेरा वतन था वहाँ पानी बहुत कम होता था, और वो 3-4 किलोमीटर से पखाल जो लेदर बैग्स के ऊपर पानी लेके आते थे। तो ये संस्कार पड़े, आज भी मुझे पानी जब व्यस्त होता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो ये कुछ संस्कार उस समय के।
बहुत अच्छा। मैं और एक खास बात, हमारे जो ज्ञानसर के डायरेक्टर निर्मला दीदी जी और आप एक ही कॉलेज में पढ़े?
हाँ, 5 साल हम मेडिकल कॉलेज में साथ में थे।
जी, साथ में पढ़े। देखो दोनों भी कितने महान विभूति बने हैं। तो डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर मतलब इतने सारे आपने सर्जरी किया, बहुत सारे लोगों को जीवदान दिया, तो आपको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले होंगे, याद है सबसे टॉप वाला अवार्ड कौन सा मिला आपको?
अच्छे तो नेशनल भी मिले, कुछ इंटरनेशनल भी मिले। तो एक इंटरनेशनल मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम हेड एंड नेक कैंसर, गले और मुंह के जो कैंसर होते हैं उसके अंदर में मेरा काफी प्रदान था। तो 1914 और 2014 100 साल के अंदर पहला कैंसर डिपार्टमेंट न्यूयॉर्क के अंदर मेमोरियल स्लोन केटरिंग कैंसर सेंटर बोलते हैं, जो सबसे ज्यादा जाना माना कैंसर अस्पताल है, जहां यहां से हिंदुस्तान से सब वीआईपी वहां जाते हैं, अमेरिका के भी। तो वहां के जो हेड एंड नेक कैंसर का 100 साल पूरा हुआ था, तो उस समय वहां डॉक्टर जतीन शाह, ये हमारे बड़ौदा के थे, लेकिन वो 1964 में वहां गए और वहां चीफ थे, तो उन्होंने एक पुस्तक निकाला 100 साल दुनिया के अंदर जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है। तो एक फ्रंट पेज के ऊपर और बैक पेज के ऊपर जो जिन लोगों ने 20th सेंचुरी 20वीं सदी में जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया हेड एंड नेक के अंदर, तो उनमें मेरा भी तस्वीर छापा था कि आपने कंट्रीब्यूट किया है देश के लिए, तो ये बहुत अच्छा था मेरे हिसाब से। और फर्स्ट वर्ल्ड कांग्रेस भारत के अंदर हेड एंड नेक की यहाँ बम्बई में हमने की थी, और हमारा स्टॉल भी लगाया था 1997 के अंदर, बाबा का स्टॉल भी वहाँ रखा था, तो काफी भाई यहाँ से आए थे। तो ये मैं समझता हूँ एक अच्छा अवार्ड था। और इंटरनेशनल फेडरेशन का फाउंडर था मैं 8 देशों के अंदर, जब हमने इंटरनेशनल, आज 69 देश है उस फाउंडेशन के, इंटरनेशनल फेडरेशन के अंदर, तो ये बहुत अच्छा है। और भारत के अंदर मुझे प्रेसिडेंट ने डॉक्टर बीसी रॉय अवार्ड दिया था, ये सबसे हाईएस्ट अवार्ड मेडिकल प्रोफेशन के लिए होता है कि आपने कुछ कंट्रीब्यूशन किया होता है, आपका नॉमिनेशन जाने माने लोगों से आता है, वाइस चांसलर्स डायरेक्टर्स, तब जाके आपको ये अवार्ड देते हैं, तो वो अवार्ड मुझे मिला था।
हाँ, मैंने आपके ऑफिस में देखा था, बहुत सारा ऐसा अवार्ड सी अवार्ड नजर आए थे वहाँ। तो डॉक्टर साहब, आप इतने सारे मेहनत करते, इतने देश विदेश सब कुछ, लेकिन आपके पीछे हमारी शिरीन बहन जो आपकी धर्म पत्नी, उसका भी बहुत विशेष रोल रहता होगा। आप उनके साथ कैसे रिलेशन आपके, आप उनको किस नाम से पुकारते?
अच्छा, ऐसा था, हमारी शादी 61 में हुई थी, जब मैं ग्रेजुएट हुआ तो मैं अकेला लड़का था, तो माता पिता की इच्छा थी कि जल्दी शादी कर, और फिर 70 तक मैं अस्पतालों में काम करता रहा 10 साल तक, तो कभी कभी तो 6-6 महीना तक कभी आता था घर पे, पर 2-3 घंटा आके चला जाता था। तो इस प्रकार से उन्होंने काफी सेक्रीफाइस दिया हमारी जब ट्रेनिंग हुई तो, और कभी ऐसा नहीं कहा कि आप ये सब क्यों करते हो, तो बहुत एनकरेजिंग थी। और सहन शक्ति सबसे, टॉलरेंस सबसे ज्यादा था, और मैं समझता हूं आज, अभी तो मैं उसको माँ कहता हूं, लेकिन क्योंकि बच्चों की माँ, तो मैं भी उसको माँ कहता हूँ, तो बहुत ख्याल रखती है। जैसे मैं कभी भी, मेरा एक स्वभाव ऐसा रहा लास्ट मिनट सब काम करना, और उसका उल्टा एग्जैक्टली, वो 2 दिन के पहले सब तैयारी करती है, तो समझो यहाँ आना है तो मेरे कपड़े 2 दिन के पहले तैयार करके रखे,
फर्स्ट दिन कौन सा, सेकंड दिन कौन, तीसरे भी दिन, सारा पूरा तैयार करके भेजते,
तो मेरा बहुत ख्याल। जैसे मैं स्वयं को कहता हूँ ओल्ड बेबी।
डॉक्टर साहब, ये तो रही लौकिक की बात है, अभी हम अलौकिक के तरफ चलते हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्था की जो महान विभूति, जिसके
नहीं तो शिरीन बहन की ये भी बात कर दो।
अच्छा,
हमारे दोनों को अध्यात्मिक इंटरेस्ट बहुत पहले से, जैसे 60s में हम रजनीश जी के पास जाते थे, वो आचार्य रजनीश थे, और मैं स्वामी चिन्मयानंद के पास सुनने के लिए जाता था, कोई पर्सनल परिचय नहीं था, लेकिन हमको बहुत अच्छा लगता था। तो गीता ज्ञान यज्ञ बम्बई में ओपन ग्राउंड्स पे चलते थे, कभी शिवाजी पार्क में चलता था, कभी क्रॉस मैदान में चलता था, कभी हॉल्स में चलता था, तो हम हमेशा जाया करते थे। तो ये आध्यात्मिक जो इंटरेस्ट था, शिरीन बहन ने बचपन से बहुत आध्यात्मिक जो जैन दर्शन का अभ्यास किया था, और मैंने भी तो काफी अभ्यास किया था, मैं वहां की पाठशाला में जाता था जहां हमको जैन सूत्र सिखाए जाते हैं, हम सब मेमोराइज करते हैं, बोल सकते हैं कंटिन्यूअसली, तो ये सब हम सीखे थे। हम उसको सामायिक सूत्र कहते हैं, प्रतिक्रमण सूत्र कहते हैं, और कभी कभी उपवास भी करते थे, जैसे पहला और छेला दिन होता है तो पर्युषण का। इस प्रकार हमारा आध्यात्मिकता में बचपन से, यंग एज से और यूथ में भी इंटरेस्ट रहा था।
बैकग्राउंड ही आपका आध्यात्मिक रहा पूरा शुरू से ही आध्यात्मिकता, क्योंकि पहले से जैन है तो उसी ने जन्म लिया है, तो उनके बहुत सारे नियम आदि होते हैं।
और हम हमारे घर में हमने कभी कांदा लहसुन प्याज ये कुछ आता नहीं था, कभी नहीं आता था। कंदमूल के हिसाब से हम बटाटा खाते थे लेकिन बाकी था कोई।
अच्छा, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ब्रह्मा कुमारी संस्था की महान विभूति जिसके अंदर स्वयं परम पिता परमात्मा की प्रवेशता होती, ऐसी महान विभूति से आपका कब मिलन हुआ?
दादी जी 1988 के अंदर उनको कैंसर का पता चला, वो दिल्ली में थी उस समय, और बाबा को पूछा होगा शायद, और बाबा ने कहा आप सीधे बम्बई जाओ। तो उस प्रकार उस समय उनका उनको देखने के लिए कोई हमारे अस्पताल के डायरेक्टर थे टाटा मेमोरियल के, उनके साथ इनकी अपॉइंटमेंट थी, लेकिन शायद वो जब पधारे बम्बई में तो डॉक्टर साहब ने कहा एक हफ्ता उनके पास समय नहीं है। तो उस समय हमारी अनिला बहन, रमेश भाई की बहन
बहन है
जो यज्ञ के VIP सो जो भी यज्ञ वत्स थे उनका सबके सामान वो रखती थी, तो दादी जी उस समय गामदेवी या शायद रमेश भाई के साथ रही थी, और उनके साथ में उनके अंग संग हमारे भाई साहब जो रहते थे वो बहुत इंटेलिजेंस थे, और उन्होंने कहा कि मैं तो एक दिन भी इंतजार करना नहीं चाहता हूँ। तो उन्होंने सोच चालू की कि कोई और डॉक्टर है क्या, तो इसमें मेरा नाम योगिनी बहन हमारी बिल्लापाले सेंटर की बहन है उन्होंने बताया, वो मुझे जानती नहीं थी लेकिन श्रीन बहन एक बार उनसे मिली थी और कार्ड छोड़ा था सेंटर के ऊपर, तो उसके वजह से उनके पास मेरा कार्ड था। तो इस प्रकार से रमेश भाई को न कहते हुए दादी को वो नाना भट्ट अस्पताल ले आए थे टैक्सी में बैठा के सुबह 6:30 बजे। तो इस तरह से हमारी पहली मुलाकात
फिर पहली मुलाकात हुई, फिर कुछ अनुभूति भी एक मेडिटेशन करते।
तो मैं जो आपको बताता था, दादी जी को मैंने नानावटी अस्पताल में पहली बार देखा, वहां तक मैंने कभी कोई ब्रह्मा कुमारी का कोई परिचय नहीं था, न तो मैंने कोई ब्रह्मा कुमारी को पहले देखी थी। तो उनका जब श्वेत वस्त्र देखे तो मैंने सोचा कि कोई सन्यासी है। बात ऐसी है, इनके साथ में 2-3 भाई आए थे सेंटर से, किसी ने उनका परिचय नहीं दिया कि कौन है, और मेरी सेक्रेटरी उनका नाम माम लिखती थी, तो कोई मैंने भी कुछ ज्यादा पूछा नहीं। जब देखने के बाद मैंने उनको पूछा कि आपको कोई प्रश्न है, तो उनका पहला ही उत्तर था कोई प्रश्न नहीं। मैंने बोला ऑपरेशन की जरूरत है, तो उन्होंने कहा कल कर दो। तो मैंने सोचा ये अजीब, क्योंकि हमेशा प्रश्न होते हैं कि आप क्या करेंगे, कैसा रहेगा, कितना फैला हुआ है। मैं दादी जी ने कोई प्रश्न नहीं पूछा, वो जो हम बाबा के ज्ञान में कहते हैं ना व्हाट नहीं डॉट, वो डॉट था उनके पास। जीवन के अंदर भी कभी प्रश्न नहीं, ये दादी जी की खास। तो मैं उस समय मुझे सन्यासियों के प्रति बहुत आदर रहता था, कोई भी साधु साध्वी महाराज तो उनको मैं बहुत रिस्पेक्ट से देखता था, और क्योंकि मुझे ये पता था कि परमात्मा की खोज में उन्होंने पूरा जीवन त्याग किया है। तो मैंने मेरी सेक्रेटरी से कहा कि दादी जी को मैंने उस टाइम तो मैंने कहा उनको जहाँ नॉर्मली जनरल वार्ड में उनको भर्ती करते हैं सबको, तो मैंने कहा उनको जनरल वार्ड में भर्ती कर दो, मैं कल ऑपरेशन करूँगा। फिर शाम को मुझे फोन आया कि उनको सबसे वहां का अच्छे में अच्छा वार्ड, डिलक्स वार्ड कहते हैं, वहां दाखिल किया था। तो मैंने सोचा कोई बड़ी व्यक्ति होगी। फिर दूसरे दिन का ऑपरेशन था, तो ऑपरेशन के दिन हमेशा मैं नीचे पेशेंट मेरे काम करके, फिर जब पेशेंट को इंड्यूस करते, मैंने बेहोश करके तैयार करके रखते थे, तो मैं जाके ऑपरेशन करता था। तो उस समय दादी प्रकाश मणि जी मिलने आई। तो मैंने जब मैं कुछ कोई और पेशेंट को देख रहा था, मेरी पीठ उनके तरफ थी, जब मैंने घूम के देखा तो सामने दादी जी खड़ी थी। तो मैंने सोचा कि इनकी कोई रिश्तेदार है। तो फिर उन्होंने कहा, मैं आप जिनको ऑपरेशन करने जा रहे हैं उनके लिए खास आपको मिलने आई हूँ, तो और अभी दिल्ली से आई हूँ और शाम को आबू जाने वाले हूँ। तो मैंने उनको कहा, आपने इतनी तकलीफ क्यों ली, क्योंकि दादी जिनका ऑपरेशन करने वाला है वो भी है, और हम तो आपका इतना आना जाना बहुत, कोई सफेद बाल थे पूरे। तो दादी जी ने कहा, नहीं ये मेरी सखी है, देखिए कैसे। तो मैंने सोचा हो सकता है, क्योंकि मुझे उनका कोई परिचय नहीं था कि इतनी महान व्यक्ति है। और फिर तो 10 दिन दादी रही, लेकिन मैं जाता था तो सब लोग आगे पीछे हो जाते थे, क्योंकि कोई ने ऐसा इम्प्रेशन दिया था कि मेरा दिमाग बहुत तेज है। तो मुझे अभी तो नीलू बहन बताती है, पहले तो मुझे मालूम नहीं था। तो दादी जी के साथ हमेशा 2-3 मिनट बात करता था, रात को नींद आई, दर्द है, और दादी जी कुछ देती थी, फूल देती थी या तोली देती थी, तो मैं एक्सेप्ट कर लेता था। लेकिन जब 10 दिन के बाद में दादी सेंटर में वापस गई, तो उन्होंने कहा, आप हमारे साथ भोजन लेने आएंगे? तो मैंने कहा, जरूर आएंगे, क्योंकि मैंने शिरीन बहन को कहा था कि हमारे पास ब्रह्मा कुमारी की दादी जी है, तो सब इतना सब मालूम नहीं था। मैंने कहा कि उनके सेंटर से अपने को भोजन के लिए आमंत्रण है, तो हम दोनों गए थे और दादी जी के साथ भोजन लिया। बात मैंने ज्यादा की, दादी ने खाली सुनी परमात्मा के बारे में, और जो भी हमारा थोड़ा सा ज्ञान था जो यहाँ से वहां से उठाया हुआ था। और फिर दादी जी ने बहुत बड़ी गिफ्ट दी, तो मैंने कहा मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसा रिवाज है कि कोई सन्यासी आते तो उनको हम कुछ देते हैं, लेते नहीं उनसे। तो नहीं, ये तो ईश्वरीय सौगात है, तो उसे मुझे समझ नहीं पड़ा कुछ, लेकिन फिर बहुत आग्रह किया तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। फिर जाने के टाइम पे दादी ने कहा, आप आबू जरूर आए।
तो प्रकाश मणि दादी ने आपको निमंत्रण दिया या
दादी गुर्जर?
गुर्जर।
तो हमने कहा, हमको तो अच्छा लगेगा माउंट आबू जाना, क्योंकि पालनपुर के बाजू में, और हम 25 साल से यहाँ आए नहीं थे। तो कहा जरूर जाएंगे। तो इस प्रकार 3-4 महीने के बाद में हमारा यहाँ आना हुआ। उस दरम्यान हम सेंटर में जाते थे, शाम को मैं 7:30-8:30 बजे कभी कभी जाता था, मुरली की कुछ पॉइंट्स सुनाते थे, वरदान सुनाते थे, लेकिन वो मुझे मुरली का कोई ऐसा 7 दिन का कोर्स नहीं दिया था किसी ने, पर मुरली अच्छी लगती थी तो अच्छी पॉइंट्स मिलती थी तो सुनने जाता।
तो 7 डेज का कोर्स नहीं हुआ आपका?
मैं कभी यहाँ जो भी सिलो बहन सूरज भाई साथ वो चर्चा हुई हम ज्यादातर, क्योंकि हम समझते थे हमको काफी मालूम है, तो इस तरह से। लेकिन मुरली की पॉइंट्स हमेशा अच्छा लगते थे। मैं जब यहाँ आया पहली बार तो मेरे साथ में एक भाई था,
वही सूरज भाई मिले थे आप? हाँ, पहली बार
मेरे सेंटर से एक भाई आया था, बलदेव भाई करके, और एक बहन आई थी, तो बहुत अच्छी तरह से हमारी सेवा की। और हमारे साथ में हमारे एक उस समय हम जैन दर्शन का अभ्यास करते थे, तो एक गुरुजी, ऐसा गुरुजी नहीं कहते थे, वो हमारे साथ में रहते थे, तो पंडित जी थे, तो हमारे साथ आए थे, वो भी बहुत विद्वान थे और बहुत दर्शनों का अभ्यास किया था उनको, उनके पूर्वजन्म की पता था उनकी। तो जब हम यहाँ आए तो इन्होंने सब लिटरेचर लिया और स्कैन किया, सब देखा, और फिर हमको बहुत हंसते हंसते कहा, उनका बहुत जॉली नेचर था कि डॉक्टर आपके लिए बराबर है। कि उन्होंने देखा प्यूरिटी का फाउंडेशन, और यहाँ का सबका व्यवहार देखा, और तो हम सुगता में रहे थे 3 दिन। तो पहले दिन हम सब, दादी जी ने सब पांडव भवन के अंदर जो 7 डिपार्टमेंट है उसमें घूम के दिखाया, और आखिर में एक कमरे में लेके गए जहाँ शांति स्तंभ के सामने एक कमरा था जहाँ 4 बेड थे, और वो अस्पताल कहा जाता था उस समय। किसी की भी तबीयत अच्छी नहीं है तो उसको वहाँ दाखिल कर देते थे। तो वहाँ एक भाई जो मेहसाना से कारपेंट्री की सेवा के लिए आया था, वो एकदम बीमार था। तो मुझे बताया कि आप चरण को देखो क्या है। तो मैंने देखा कि इनकी पल्स बहुत वीक थी, पसीना छोटा था, और सब नस में इंजेक्शन देने की कोशिश करते। उसको हार्ट अटैक आया था, मासिव हार्ट अटैक था, और उसकी तबीयत बहुत सीरियस थी। तो मैंने कहा आप इनको ICU में कहीं भर्ती कर दो, लेकिन यहाँ तो ICU नहीं था। तो मैंने कहा उनको जल्दी से जल्दी यहाँ से हटा लो, क्योंकि इनकी तबीयत अच्छी नहीं। उसको मेहसाना भेजा गया, दूसरे दिन उसने शरीर छोड़ा। और दूसरे दिन हमको पिकनिक पे ले गए थे निर्वर भाई, यहाँ हमारा जो नहीं जो क्या बोलते हैं उसको, जहाँ मगरमच्छ है,
ट्रैवल टैंक,
ट्रैवल टैंक में गए थे। तो ट्रैवल टैंक गए तो निर्वल बहने का मुझे जरा आप घूमो, मैं बैठा हूँ। उनको शायद छाती में दर्द होता था, अंजाइना। तो फिर शाम को उनको भी मुंबई भेजा गया, और वहाँ उनकी हार्ट की सर्जरी हुई। उस दरम्यान में कुछ बातें करते थे, तो मैंने उनको कहा कि आप यहाँ इतना सेवा भावी भाई बहन है, इतने वातावरण इतना अच्छा है, पहाड़ है, पानी है, वनस्पति है, तो आपको यहाँ अस्पताल बनाएंगे तो अपने आप से अच्छा हो जाएगा। तो इतनी छोटी सी बात हुई थी। करुणा भाई से भी घूमते हम नक्की लेक पे घूमने जाते थे, ऐसी बात हुई। और फिर उन्होंने जब उनका हार्ट की सर्जरी हुई थी, मैं उनके साथ में था ऑपरेशन थिएटर में, बाद में रोज जाता था। तो उस दरम्यान इनको भी ऐसा लगा कि नहीं हमारे यहाँ कुछ होना चाहिए। तो उस समय दादा बाटूमल उनको मिलने गए थे, तो उन्होंने कहा, बाटूमल जी ने कहा कि आप कुछ कन्याओं के लिए कुछ स्कूल या कॉलेज बनाना चाहेंगे तो हमारा जो एजुकेशनल फाउंडेशन है, हमको इंटरेस्ट है वीमेंस एजुकेशन में। तो भाई साहब ने कहा नहीं, हम तो सोच रहे हैं कि अस्पताल बनाने का, कोई बात नहीं हुई थी, ऐसी छोटी सी बात थी। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप जो कहते हैं तो हमारे भाई साहब जो होनोलुलु में है उनको पूछेंगे, वो हाँ कहेंगे तो हम जरूर आएंगे। तो फिर उन्होंने हाँ कहा, और बाटूमल जी माउंट आबू में 3-4 महीने के बाद में आए,
पहला डोनेशन उन्होंने इश्यू किया।
तो उनके सर पे मुझे भी बुलाया गया कि आप आके उनको बताओ आप क्या करना चाहते हैं, यहाँ आपने कहा था अस्पताल बनाने का। तो फिर उस समय कुछ पुस्तकों से मैंने जेरोक्स किया, काट के कट पेस्ट करके जेरोक्स निकाला, और उनको एक प्लान बताया कि किस तरह से छोटे गांव में अस्पताल बनाया जा सकता है। तो और फिर उस समय जो हमारी ग्लोबल अस्पताल है वहाँ बड़ा एक मकान था, पुराना मकान था, वहाँ एक साबुन की फैक्ट्री थी और बड़े कमरे थे, उसके अंदर करीब 100 लोग एक साथ में रहते थे जब बाबा का टर्न होता था। तो उसी जगह पे उन्होंने कहा चालू करेंगे। तो मैंने कहा ऐसे मकान में तो नहीं हो सकता है। फिर प्लान किया, कुछ प्लॉट्स बनाए हुए थे वापस ले लिए लोगों से, और वो 4.5 एकड़ जमीन उस समय, और उस भाटूमल जी ने उसके लिए डोनेशन दिया जमीन के लिए, और दादी जी ने कुछ दिया और कहा अभी आप चालू करो। और दादी जी ने कहा आप एक काम करो, आप हमारे जो विदेश के सेंटर्स है वहाँ जाओ और सबको अस्पताल के बारे में बताओ। तो इस प्रकार से ज्ञान की शुरुआत, अभी तो थोड़ा भी ज्ञान नहीं था, और मुझे विदेश भेजा गया, और मैं इंग्लैंड गया, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका के 3 सेंटर्स में गया, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, फिर जापान में तो क्यों ओसाका और फिर हांगकांग सिंगापुर, तो हर जगह पे हम जाते थे तो कॉन्सुलेट में जाते थे, उनके मेयर्स के पास जाते थे, बड़े लोगों के पास जाते थे। तो इस प्रकार काफी लोगों को हमने कंसेप्ट पे उसके भी हम लोग तो बनाने जा रहे हैं, हमें मदद की जरूरत थी उस समय। तो इस प्रकार से और ये जब अस्पताल के प्लान बना तो इतने एकदम एक साथ में बन नहीं सकता था। और यहाँ का जो प्रोजेक्शन था, जो प्रोजेक्ट लिखने वाले थे, उन्होंने कहा यहाँ 10 बेड से ज्यादा नहीं बनाना। हमने कहा 10 बेड का अस्पताल नहीं बन सकता है। तो बोला ठीक है 30 बेड का बनाना। हमने कहा नहीं, हमको तो मिशन अस्पताल बनाना है, जैसे वेलोर में क्रिश्चियन मिशन है ऐसा। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो आप 70 बेड से ज्यादा यहाँ नहीं बनाना, क्योंकि यहाँ की बस्ती है 20,000 और सालों से इतनी है, ज्यादा बढ़ती नहीं है यहाँ की आबादी। तो इस प्रकार से हमने 125 बेड्स का अस्पताल बनाया और उसको ब्रेकअप किया। फर्स्ट स्टेज में 8 बेड्स और थोड़ा इमरजेंसी और क्लिनिक्स, जो हमारा आगे का मकान है, और पीछे सेकेंड एंड थर्ड स्टेज में बनाने का नक्की किया। और फिर जब फर्स्ट स्टेज के अंदर बनाया, उसमें हमने खास फिजियोथेरेपी का डिपार्टमेंट बनाया था। क्लिनिक्स तो सब बनाए थे, जैसे मेडिसिन, सर्जरी, बच्चों का, बहनों का, और ENT, डेंटल, लेकिन एक फिजियोथेरेपी का डिपार्टमेंट इसके लिए बनाया था कि दादियों का उम्र देखते हुए कि वो कसरत करे और उनकी संभाल रखे। लेकिन मैं समझता हूँ किसी ने उसका उपयोग ज्यादा नहीं किया। पर ऐसे तो बहुत सुंदर तरह से अस्पताल का निर्माण हुआ। और उस निर्माण में बाबा ने मेरी बेटी को निमित्त बनाया। ये भी एक अजीब बात थी, क्योंकि वो खाली 22 साल की थी और उसने आर्किटेक्ट की परीक्षा दी थी, कोई अनुभव नहीं था
और पहला प्रोजेक्ट,
पहला ही प्रोजेक्ट। लेकिन ये शक्ति बाबा देता है, मैं नहीं समझता हूँ उसकी शक्ति थी। वो भी आज भी कहती है कि क्योंकि आज भी हॉस्पिटल सुंदर लगती है और जैसे हमारा गार्डन हमारे हैं ऐसा लगता है। सामने का जो शेर सिंह पार्क है, बाजू का पार्क है, तो ऐसा लगता है कि हम एक गार्डन के अंदर बैठे हुए हैं।
बहुत ही सुंदर सभी लोग
भी उसको एनवायरमेंट का बहुत जैसे बचपन से वो कभी किसी को हर्ट नहीं करती थी। उसको झाड़ काटना अच्छा नहीं लगता था, पत्थर तोड़ना अच्छा नहीं लगता था। तो जहां भी रॉक्स थे वहां ऐसा गोलाकार भी लिया, झाड़ बचाए। जो हमारा फ्रंट के जो झाड़ है उसके लिए उसको इस प्रकार बनाया और फिर उसको हेलिकल स्ट्रक्चर दिया। DNA का स्ट्रक्चर होता है ऐसा, जो हमारा जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है DNA, उसका एक सिंगल हेलिक्स उस स्ट्रक्चर बनाए। और ऊपर जो डोम्स बनाए वो हमारे देलवाड़ा के टेम्पल के डोम्स है, उसके साथ में मिलजुल के दिखाई पड़ते। तो यहाँ का एनवायरमेंट और हेल्थ का सिंबल, ये दोनों सिंबॉलिक स्ट्रक्चर्स बने थे, तो बहुत अच्छा है।
डॉक्टर साहब पहली बार आए और पहली बार आने से ही सेवाएं शुरू कर दिया। पहले तो पेशेंट को देखा अपने, चेक किया, फिर निर्वय भाई से बात हुई तो भाई चलो हॉस्पिटल होना चाहिए। मतलब इनका जन्म ऐसे समय हुआ कि सेवाएं शुरू हो गई। और देखो उन्होंने कहा कि हमारा भी ज्ञान पूरा भी नहीं, तो प्रकाशमणि दादी जी ने उनको देश विदेश भेजा ताकि हॉस्पिटल के लिए फंड की जरूरत है। तो इस प्रकार से बाबा ने उनका जन्म और विशेष करके गुलजार दादी के द्वारा, तो बहुत बड़ी बात है। तो भ्राता जी आप राजयोगी बन गए, उसके बाद आपके अंदर बहुत सारा बदलाव तो आया ही होगा, क्योंकि पहले हम सुनते थे कि ऑपरेशन थिएटर वाले आपको बहुत डरते थे।
अच्छा सर, स्वभाव तो तेज था ही, इसमें कोई शक नहीं। मेरे पिताजी का स्वभाव भी बहुत तेज था, फैमिली के अंदर था। और सर्जन सब होते हैं, तो मैं जितने भी सर्जन के साथ काम करता था वो बहुत तेज स्वभाव के होते थे। जब ऑपरेशन में मदद करता था तो हमारा एक बॉस था वो लात मारता था यदि बराबर नहीं पकड़ा तो। और एक बॉस था वो हाथ में गलत इंस्ट्रूमेंट आया तो ऐसा फेंक देता था। तो ऐसे एक सिस्टम बन गई थी। मगर एक जो हमारे बॉस थे जिनसे मैं बहुत सीखा, बहुत ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच, उनका नाम था डॉक्टर बॉर्जिस। वो कैंसर के डॉक्टर थे, बहुत उनका नाम बहुत बड़ा था। टाटा अस्पताल में खाली 4 सर्जन थे उस समय। तो ये जो थे वो क्रिश्चियन थे, तो हमेशा संडे को मास हमेशा चर्च में मास के लिए जाते थे और शाम को 4 बजे राउंड पे आते थे, तो आप कहीं जा नहीं सकते। उनके साथ 6 महीने काम किया, एक दिन मैंने उनसे छुट्टी ली थी घर जाने की, उस दिन मेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं 4 बजे आपको राउंड लेता हूँ, फिर तो आप जाएंगे और सुबह में 6:30 बजे मुझे फ़ोन कीजिए। मैंने आप जहाँ भी जाएंगे ताबड़तोड़ वापस और काम। उनका इतना और डेडिकेशन जबरदस्त था। वो जैसे एक टाई 6 महीने एक ही टाई पहनते, उनका शू था तो उसके अंदर छेद था, तो कोई हरकत नहीं। वो टेनिस शू पहनते थे ऑपरेशन थिएटर, और बहुत ह्यूमैनिटेरियन। कोई भी आदमी आता तो उसको बहुत प्रेम से ट्रीटमेंट करते थे। और जैसे एक पेशेंट का ऑपरेशन किया है और उस दिन में 2-3 टाइम जाके देखेंगे, ये जो आजकल कोई देखता नहीं, आईसीयू में डाल दिया फिर कोई संभालता है उसको। तो उस प्रकार से ये जो पर्सनल अप्रोच, पर्सनल टच, ह्यूमन टच जो आज मिसिंग है, वो हमने उनके पास से सीखा। और मेरे जो दूसरे बॉस थे डॉक्टर जसावाला, वो ऑर्गेनाइजेशन के थे, उनको हर चीज ऑर्गेनाइज करना बहुत अच्छा लगता था। नेशनल इंटरनेशनल हिसाब से देखते थे, क्या कुछ नया है तो लाना चाहिए। तो इस प्रकार से
डॉक्टर साहब, याद तो हॉस्पिटल बन गया, लेकिन फिर आप मुंबई गए तो मुंबई में भी इतना बड़ा हॉस्पिटल BSS हॉस्पिटल, उसके भी आप निमित्त बने, ये कैसे बाबा ने कैसे संयोग गढ़ाया?
देखिए वो है बाय प्रोडक्ट, ये मेन प्रोडक्ट ये अपने अस्पताल आबू के थे। तो बम्बे से वहाँ का एक डेप्यूटी मेयर था, वो यहाँ विजिट पे आए थे, तो उनको अस्पताल बताई तो उनको बहुत अच्छा लगा। उस समय बम्बे में ये अस्पताल का निर्माण हुआ था, हो रहा था, लेकिन वो अस्पताल उनको किसी को चलाने को देनी थी, क्योंकि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने नक्की किया था नया स्टाफ अपॉइंट नहीं करना और नया बजट नहीं करना। तो इस तरह से हमें जब पता चला, उन्होंने आके हमारे एक भाई थे जो BK भाई थे उसको इन्फॉर्म किया कि आपको यदि इंटरेस्ट है, तो उसने हमें बताया। तो इस प्रकार से हम जाके देखा, अस्पताल बनता था, 7 मंजिल का मकान बनता था, और उस समय तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो हम पांव से सब चढ़े ऊपर 7 माला तक देखा, बहुत अच्छा लगा। तो हमने कहा योगी बहन जी को कहा कि बहन जी हमको ये अस्पताल लेना चाहिए, तो उनको भी बहुत इच्छा थी कि हम कुछ करें। मैंने कहा ये विजिबल, हमारा ब्रह्मा कुमारी इज नॉट विजिबल इन मुंबई, ऐसी कोई हमारी बड़ी बिल्डिंग नहीं थी उस समय 2002 के अंदर, और अस्पताल इतना बड़ा हमको चलाने को मिले तो बहुत अच्छा। तो इस प्रकार से हमने फिर उसको लिए, बहुत प्रयत्न भी करना पड़ता है, पॉलिटिकली लोगों को जाके मिलना पड़ता था, तो सब किया। और बाद में जब फाइनल मीटिंग थी, तो दोनों के चेयरमैन थे, बॉम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी थी जिन्होंने मकान बनाया था, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जगह थी, तो कमिश्नर और इन्हें दोनों के साथ हमारी मीटिंग हुई। तो जब हम कमिश्नर साहब के ऑफिस के बाहर थे, तो ये चेयरमैन साहब आए, वो भी IAS थे, तो उनके साथ हमारा परिचय कराया गया। तो हमारी बात हुई, तो मैंने कहा हम बाबा के शब्द बाप रहे, हम लेवता नहीं हम देवता है, हम देना ही चाहते हैं कुछ। तो उनको ये बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने वही शब्द जाके म्यूनिसिपल कमिश्नर को कहा कि ये लोग लेवता नहीं देवता है। तो इस प्रकार से बाबा के एक महावाक्य कैसे काम करता है, इस प्रकार से बहुत
वर्तमान समय जो देखा, ये जो हॉस्पिटल सारे अंधेरे में मेन रोड पे लिखा है ब्रह्मा कुमारी, सब लोग ब्रह्मा कुमारी हॉस्पिटल, मतलब अपने आप ब्रह्मा कुमारी की एडवर्टाइज भी हो जाती है इसमें, नहीं?
ब्रह्मा कुमारी को वो अस्पताल के अंदर सेवा का भी बहुत मौका मिला, कई प्रकार की सेवाएं हुई वहां से, पेशेंट्स की सेवा हुई, डॉक्टर्स की सेवाएं हुई, वैल्यूज इन हेल्थ केयर की, जानकी फाउंडेशन द्वारा जो वैल्यूज इन हेल्थ केयर स्पिरिचुअल अप्रोच बना उसका, फिर हमारे डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंसेस काफी हुई। तो मैं समझता हूँ सेवाओं का एक्सपेंशन बढ़ता ही जाता है।
बड़े बड़े वीआईपी भी जैसे अमिताभ बच्चन है, ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी हस्तियां भी।
उद्घाटन के लिए तो सब बॉम्बे में एक्टर एक्ट्रेसेस आपको जिसको भी बुलाना है उसको बुला सकते हैं। तो शबाना आजमी, सुनील दत्त, अमिताभ बच्चन और कई लोग आए, जया बच्चन आने वाली थी, उसके बदले अमिताभ बच्चन को भेजा ब्लड बैंक। और उस टाइम ब्लड बैंक का उद्घाटन के लिए दादी जी भी थी, गुजर दादी जी, तो बहुत सुंदर रहा।
डॉक्टर साहब, आपने परमात्मा की इतनी पालना ले रहे हैं, सब बहुत कुछ अनुभव, लेकिन कुछ ऐसा अनुभव सुनाओ जो मतलब आप कभी भूल नहीं सकते, बाबा का, बाबा की मदद का हो या कोई भी ऐसा अनुभव जो आपको भूल नहीं सकते कभी ऐसा अनुभव।
अच्छा है, दादियों के साथ बाबा के साथ इतने अनुभव हुए, लेकिन मुझे एक तो बस अजीब सा लगा कि बाबा आए थे और हम सामने बैठे थे
ओम शांति भवन में,
नहीं फिर बुलाया तो मुझे नहीं मालूम था कि मुझे बुला रहे हैं, तो फिर कहा कि नहीं आपको बुला रहे हैं। फिर वहां गया तो उस बच्चे थी तो उन्होंने गुलाब का हार दिया, तो ये तस्वीर मन के अंदर छपी हुई है और मेरी ऑफिस के अंदर पीछे लगा हुआ है, तो मैं समझता हूँ ये तो सबसे अच्छा। और दादी के साथ तो बहुत प्यार का, गुलजार दादी ने इतना प्यार दिया हमें, हम जब भी दिल्ली जाते थे तो उनके पास रहते थे, उनको मिलने जाते थे। एक बार ऐसा हुआ कि मैं, हमारी फ्लाइट कुछ एक डेढ़ घंटा लेट हो गई, तो 7 के बदले 8:30 को पहुंचे, तो दादी जी इंतजार करते थे और फिर हमने कुछ बातें किया, चालू किया तो शायद 10-15 मिनट ऐसे बातें में निकल गई। तो उनके साथ में विजया बहन थी, ऊपर नीचे होती थी, तो मैंने सोचा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा दादी जी ने अभी तक भोजन नहीं लिया, आपके लिए इंतजार करते थे, तो समय हो गया। तो दादी जी नहीं नहीं कोई बात नहीं। तो इस तरह से दादी जी के साथ अमेरिका जाना हुआ था 95 के अंदर, 15 दिन साथ में रहे थे। उस समय दादी जी का कैंसर कुछ प्रमाण में बढ़ा था, उसकी कीमोथेरेपी और सब हुई थी, और फिर उनको सबकी इच्छा थी कि हम अमेरिका ले जाएं, तो डॉक्टर को मिलने गए थे। तो डॉक्टर्स अगले दिन भोजन के लिए हंसा बेन रावल का जो सेंटर है सान एंटोनियो में, वहाँ सब लोग आए थे, 10-15 डॉक्टर्स थे। दादी जी सबसे मिली करीब 1-2 घंटा, और दूसरे दिन हमारी अपॉइंटमेंट थी वो डॉक्टर साहब को, प्रोफेशनल अपॉइंटमेंट थी, तो हम गए तो 5 मिनट में बात पूरी हुई। उन्होंने रिपोर्ट देखा दादी को, ऐसा थोड़ा एग्जाम किया, बोला बहुत अच्छा है, आपका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हुआ है बस। और देखिए दादी को 88 में ऑपरेशन हुआ, 95 में दादी का कैंसर शरीर के और हिस्सों में फैला, और दवाइयाँ और हॉर्मोन्स के ट्रीटमेंट, दादी आखिर तक बिना कैंसर रही, और हम दर 3 महीने चेकअप करते थे उनका। तो इस तरह से वो बहुत एक बड़ा प्रसंग था 95 के अंदर, कि जब पता चला कि दादी जी को स्प्रेड हुआ है, तो दादी प्रकाशमणि, निर्भर भाई सब बम्बई आए, कहा क्या करना है। तो फिर हम लोगों ने कहा कि और भी डॉक्टर्स की सलाह लें, तो रेडियोथेरेपिस्ट को बताया, तो उसने कहा रेडियोथेरेपी चालू करते हैं। फिर कीमोथेरेपी ने कहा, कीमोथेरेपी के लिए बताया, तो उन्होंने कहा हम चालू करते हैं। फिर दादी ने कहा तो क्या करना है, तो फिर हमने कहा हम जनरलाइज ट्रीटमेंट पहले करेंगे। तो इस समय इस प्रकार से हमने उनकी ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी से चालू की, और 6 महीने दादी का बहुत डिफिकल्ट थे, क्योंकि ये दवाइयाँ बहुत जहरी होती है, तो काफी वीकनेस आ गई थी, बाल चले गए थे, लेकिन वो 1 साल ट्रीटमेंट के बाद दादी हमेशा के लिए अच्छी हो गई।
और तो सभी लोगों ने ये योगदान भी किया था, पूरे ब्रह्मा कुमारी संस्था में जो भी बाबा के बच्चे थे, रात दिन दादी के लिए, क्योंकि बाबा का रथ था।
नहीं, दादी का हिस्टोरिकल पेशेंट थे, हम कभी कहते हैं ना कि परमात्मा का रथ, तो बाबा ने तो कहा है आपका जो कर्म भोग तो करना ही पड़ेगा आपको, तो ये तो कर्म भोग तो हुआ ही, इतनी सेवा की वजह, सेवा इतनी होने की वजह भी। तो दादी जी से तो, दादी जी एकदम सरल थी। एक बार हम ह्यूस्टन के एयरपोर्ट पे थे और नदी फ्रेश होने को गई और हमारा भाई और हम सोचा कि काफी लोग एयरपोर्ट पर मिलने आए थे, तो उनको ब्रीफ करने की आप ठहरिए दादी अभी आती है। तो उनके साथ में गीता बहन थी हमारी कैलिफोर्निया। तो जब वो बाहर आए तो हमको नहीं देखा उन्होंने, तो उन्होंने चलने का चालू किया। वो ट्रेन थी, ट्रेन में आने का, क्योंकि काफी लंबा था डिस्टेंस, तो दादी चलते चलते आई। फिर 15-20 मिनट चलना पड़ा उनको। तो ऐसे इस तरह से कभी कभी हम भी कुछ मजाक हो जाती थी।
डॉक्टर साहब, आपका आबू के साथ बहुत गहरा कनेक्शन हो गया है, फिर आबू के साथ इतना प्यार हो गया तो आपने आबू में भी एक घर बना दिया है।
नहीं, इसमें तो घर बनाने का इतना प्रयोजन था कि हमको यहाँ आके रहना था। हमने सोचा 60 साल के होंगे तो जब टाटा अस्पताल से मैं रिटायर होऊंगा तो यहाँ आके सेवा करूंगा। लेकिन दादी जी ने, प्रकाशमणि दादी जी ने कहा कि नहीं डॉक्टर, आपको यहाँ इतनी सेवा का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी तो हाईली स्पेशलाइज सर्जरी है, यहाँ उतने पेशेंट भी नहीं है और इतनी फैसिलिटी भी है। तो खाली घर बना, पर घर बना तो अच्छा लगा, सेवा भी होती है लोगों की और हम भी यहाँ रेगुलरली आते जाते रहते।
आप जैसे जैन परिवार से जुड़े, फिर ब्रह्मा कुमारी परिवार से जुड़े, क्योंकि आपको पहले तो लगता ना कि हमारा ये तो बहुत बहुत ऊंचे,
हमारे यहाँ नॉर्मल थिंकिंग बहुत लिबरल होता है, क्योंकि जो प्रिंसिपल्स है सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और चोरी नहीं करनी, ये 5 मेन प्रिंसिपल्स है। तो ये प्रिंसिपल तो ऐसे भी फॉलो करने चाहिए था। तो शायद, और जो हम जो समाज से आते हैं पालनपुर के जो स्थानक वासी जैन समाज, वो बहुत लिबरल है। तो हम लोग ने हमारी विलेपाले सेंटर की दीपा बहन के साथ में हमने काफी प्रोग्राम भी किए, जब परिश्रम प्रवचन की प्रवचन माना चलती है तो वहां भी हम जाते हैं, बाबा का ज्ञान इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इस प्रकार से किसी ने कभी ऐसा नहीं कहा कि आप क्यों ब्रह्म कुमारी जाते, उनको भी अच्छा लगता है। कई लोग आते हैं हमारे साथ में, हमारे परिवार से सब यहाँ आए, कई लोग बाबा को मिले भी थे।
मैंने देखा कि आपके साथ तो पूरे संस्था के जितने भी सीनियर है सब मिलते, आपके साथ शिवानी बहन के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशन है, बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस, डॉक्टर कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, तो आपका कैसे मिलना हुआ था इनसे?
शिवानी बहन और मेरी बेटी लगभग उम्र में शरीक है, और हम कभी भी ट्रेन में आते थे पुणे से, वो आती थी तो ऐसा मिलना होता था। फिर शिवानी बहन हमारे टेलीविजन स्टूडियो में काम करती, पहले जैसे हमारा इंटरव्यू लेना है तो उस कैमरा संभालती थी, तो उस वक्त छोटी थी, उसको किसको मालूम नहीं था कि उनके पोटेंशियल क्या है। तो फिर और उसके बाद में तो उस स्टूडियो के अंदर एक बार वो गई, और हाँ तो और कोई बहन आने वाला या भाई बड़ा आने वाला था, नहीं आया तो उनको बैठा दिया, और फिर उन्होंने जो बोला तो वो खुद कहती है कि मैंने खुद सुना तो मुझे भी बहुत आश्चर्य लगा कि मेरे से कौन बुलवा रहा है। तो इस प्रकार से, और उनके साथ जो बहन कनुप्रिया थी वो भी बहुत प्यार से उनका इंटरव्यूज लेती थी, लेकिन बाद में कई बार उनको हमारे प्रोग्राम से बुलाना होता था, वो शुरू शुरू के दिन थे, और बाद में उनकी युगल को
विशाल,
हाँ वो जो उनके सब शरीर की हड्डियां नरम हो गई थी, वो चल नहीं पाता था, खड़ा भी नहीं हो सकता था। तो उस समय पुणे के अंदर एक जाने माने फिजिशियन है डॉक्टर सरदेसाई, जो मैं उनको बचपन से जानता, तो कई एम अस्पताल में ही काम करते थे। तो उन्होंने कहा कि जब डायग्नोसिस हुआ कि उनको पैराथायरॉयड ट्यूमर, गले के अंदर पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है, वो कंट्रोल करते हैं शरीर का कैल्शियम, तो उनके हड्डी में से सब कैल्शियम चला गया था, तो ताकत नहीं, मसल्स भी वीक हो गए थे। तो उन्होंने कहा इनको अमेरिका ले जाना पड़ेगा ट्रीटमेंट के लिए। तो शिवानी बहन ने कहा हमारे पास तो इतनी फैसिलिटी नहीं है उनको मैं ले जा सकूं, लेकिन फिर उन्होंने कहा नेक्स्ट मॉर्निंग अमृत वेला करते समय बाबा ने मैसेज दिया अशोक बच्चे को कॉन्टेक्ट करो। तो सुबह में 5 बजे उनका फोन आया, तो उन्होंने मुझे बताया कि इस प्रकार से प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा आप लेके आ जाओ, मैं दूसरे दिन ऑपरेशन कर देता हूँ। तो उनको कुछ आश्चर्य लगा, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ने कहा अमेरिका ले जाने। मैंने कहा नहीं, ये तो गले का ऑपरेशन है, ये तो मेरा ही काम है, कंटिन्यूसली मैं यही करता हूँ और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस प्रकार से उनको फिर अस्पताल में लाया गया। और जो भाई साहब के पिताजी हैं वो इंटेलिजेंस के कमिश्नर थे बॉम्बे में, तो मेरे को मालूम ही नहीं था। उन्होंने प्रॉब्लम जांच भी किया कि बराबर जगह है कि ऐसे कोई ब्रह्म कुमारी इसके अंदर ले जाती है। तो फिर उनको लीलावती अस्पताल में भर्ती किया, ऑपरेशन किया। उसके बाद में मैंने देखा नहीं है, वो अच्छा है एकदम,
बहुत
अच्छा। क्योंकि वो एक अच्छा ऐसा अच्छा ट्यूमर होता है कि निकाला के पैसा अच्छा हो जाता है, छोटी गांठ होती है।
डॉक्टर साहब हम सभी बैठे यहाँ, आप कैंसर के नामी ग्रामी डॉक्टर हो, हमारे लिए मतलब ब्राह्मण परिवार कभी डर रहता है कैंसर का, ये है कैसे होगा क्या होगा, तो हमें क्या सावधानी बरतनी होगी इसके प्रति, थोड़ा मतलब सबके लिए थोड़ा संदेश दो आपके तरफ से कि भाई डरना नहीं है, हम ठीक रहना, क्या क्या करना चाहिए, हमारा लाइफस्टाइल कैसे होना चाहिए इसके प्रति।
देखिए हमारी संस्था में ज्यादातर बहनें हैं, 30,000 बहनें डेडिकेटेड हैं और ये हमारे यहाँ प्योरिटी की वजह से उनको बच्चे का तो सवाल ही नहीं आता है। तो इन स्त्रियों में जो शादी नहीं करती, बच्चे नहीं होते, उनको ब्रेस्ट कैंसर का संभव सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि हार्मोनल ट्रीटमेंट, ये हार्मोन की वजह से ब्रेस्ट कैंसर होता है। तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए हमेशा मैं समझता हूँ 30 साल के बाद कभी भी गांठ है तो उसको ताबड़तोब दिखाना है, उसकी जांच करनी है। कई प्रकार की जांच होती है, जैसे क्लिनिकल डॉक्टर देखते हैं, फिर उसका मेमोग्राफी होती है, सोनोग्राफी होती है, उसकी बायोप्सी होती है, एक सुई डाल के खाली बायोप्सी, एक छोटा सा सुई लगता है, पता चल जाता है कि कैंसर है कि नहीं टेस्ट करने से, इसको हम फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी कहते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हर बहन को सेल्फ ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, आप कोई भी साइट पे जाएंगे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन लिखेंगे तो उसमें सब बताते हैं, इस वीडियो बताएंगे कि किस तरह से स्वस्तन परीक्षण किया जा सकता है। तो गांठ हो तो उसकी इमीडिएट, कभी भी उसमें शर्म रखने की जरूरत नहीं है कि संकोच होता है कि हम किसी को बताएं, ये तो बहुत जरूरी है। और खास करके ब्रेस्ट कैंसर पेनलेस होता है, उसके अंदर दर्द जरा भी नहीं होता है। तो लोग समझते हैं कि दर्द नहीं तो क्यों उसको बताना किसी को, तो मैं समझता हूँ ये बहुत अगत्य का है। दूसरा कभी कभी ओवरी या गर्भाशय का कैंसर होता है, तो मैं समझता हूँ हर साल एक चेकअप कराना जरूरी है शरीर का, चाहे ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो, हार्ट की बीमारी हो, पेट की सोनोग्राफी करते हैं तो सब ऑर्गन्स दिखाई पड़ते हैं, लीवर दिखाई पड़ता है, पैनक्रियास दिखाई पड़ता है, किडनीज दिखाई पड़ती है, गर्भाशय दिखाई पड़ता है, ओवरीज दिखाई पड़ती है। सिंपल टेस्ट है, कुछ करने का नहीं, 5 मिनट के अंदर से पता चल जाता है कि कुछ है। तो हर साल में एक बार, यहाँ तो सब अवेलेबल है, नीचे हमारा मशीन है, सीटी स्कैन है, यदि कभी जरूर पड़ी कि नहीं उसका और भी जांच करनी है, तो मैं समझता हूँ हमारे पास सब सेवाएं यहाँ हाजिर है और उसका सदुपयोग करना चाहिए। ये दो चीज तो मैं खास कहूंगा बहनों के लिए, और चेकअप वंस अ ईयर करना ये बहुत जरूरी है। मैं खुद जाता हूँ, कई बीमारी ऐसी है कि आपको कभी पता नहीं चलेगा, पैनक्रियास का कैंसर, किडनी का कैंसर, वो आपको कुछ नहीं होता है, वो गांठ बढ़ती रहती है और स्प्रेड होती रहती है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत जरूरी है। और भाइयों के लिए तो यहाँ हमारे यहाँ तो अल्कोहल और टोबैको नहीं खाते, तो मुंह का और गले का कैंसर ज्यादा नहीं होता है, लेकिन यदि आवाज में फर्क पड़ा, यदि खांसी बहुत आती है तो उसकी जांच जरूर होनी चाहिए। यदि आप ओल्ड हैं 50-60 साल के ऊपर तो प्रोस्टेट का चेकअप होना चाहिए, वो ब्लड टेस्ट करते हैं उससे पता चलता है कि है कि नहीं, और एनुअल चेकअप वर्ष में एक बार जरूर करना चाहिए। और हमारे पास सब यहाँ सुविधा है और कहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ आपको खर्चा कम होता है या ना होता है, तो मैं समझता हूँ ये जरूरी करना चाहिए
डॉक्टर साहब।
और दूसरा है कि चिंता नहीं, हम बाबा ने हमको निश्चिंत बनाया, हिम्मत और हमारी डर तो होने नहीं चाहिए, फियरलेस, यदि हुआ तो भी अच्छा होना, पॉजिटिव थिंकिंग, हमको सकारात्मक चिंतन सिखाया गया है तो उसका सदुपयोग करना है, शुभ भावना शुभकामना स्वयं के प्रति भी रखनी है कि जो भी होगा अच्छा होगा, तो मैं समझता हूँ ये सबसे अगत्य का है।
डॉक्टर साहब जब मैं आपके वहाँ हॉस्पिटल मुंबई में आया था तो चेकअप हो गया, बायोप्सी की, तो किसी ने बताया कि भाई इसका तो पॉजिटिव है, कैंसर पॉजिटिव, जब बायोप्सी हुआ तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा यार ये तो पॉजिटिव है, क्योंकि हमको निगेटिव और पॉजिटिव का पता ही नहीं था तो बाद में पता चला ये तो पॉजिटिव वाला आपको कैंसर है करके। तो ये बहुत सारी चीजें कि बाबा के बच्चे यहाँ बैठे हैं, हम लोग को बहुत सारी चीजों का पता नहीं होता, तो इसलिए डॉक्टर साहब ने खास आपको बताया कि कोई डरने की बात नहीं, चिंता की बात नहीं, बाबा हमारे साथ है, लेकिन आपको जागरूक भी रहना है।
देखिए ऐसा है कि कैंसर में अनेक प्रकार के कैंसर होते हैं, कई कैंसर ऐसे है कि आप सालों तक जिंदा रहते हो उसे कोई तकलीफ नहीं होती, जैसे थायराइड का कैंसर होता है एक प्रकार का कि निकाला उसके बाद में 20 साल तक 99% लोग अच्छे रहते हैं, तो इसमें कुछ डरने की बात नहीं है। कई कैंसर ऐसे है जिसे दवाई से अच्छे हो जाते हैं, ब्लड कैंसर है, लिम्फोमास, ल्यूकेमियाज और हॉजकिंस डिजीज कहते हैं, जो इनको हुआ था वो लिम्फो मैलिग्नेंट लिम्फोमा कहते हैं, इतनी बड़ी गांठ थी शायद उनको पता भी नहीं, 14 सेंटीमीटर या इतनी बड़ी गांठ थी, और खाली दवाई से अच्छा हो गया, रेडिएशन भी नहीं दिया आपको नहीं। लेकिन खाली दवाई से, तो ये बहुत सेंसिटिव ट्यूमर होता है, जस्ट डिसॉल्व हो जाता है, और अब आजकल तो इतनी नवी दवाइयाँ निकली, लेकिन एक्सपेंसिव होती है दवाई, और दवाइयाँ के अंदर साइड इफेक्ट्स भी काफ़ी होती है, तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए कि बाबा ने जो कहा है हर चीज बहुत अगत्य की है, जो भी होता है वो कल्याणकारी है तो मैं समझता हूँ।
डॉक्टर साहब आपके साथ निर्वय भाई से बहुत कनेक्शन रहा, तो उनके साथ का कोई एक आधा अनुभव सुनाओ, जो फ्रेंडशिप में कोई ऐसी कोई बात निर्वय भाई के साथ।
भाई साहब ऐसे हैं, उनको 88 के अंदर, 89 के अंदर हार्ट का बाईपास का ऑपरेशन हुआ, और वो अच्छे रहे, सारे विश्व में घूमते रहे और बहुत सेवाएं की, इतनी मकानें बनाए उन्होंने, तो बहुत सदुपयोग किया, लेकिन उनको कुछ ना कुछ ऑपरेशन हार्ट का तकलीफ होती रही, और बाद में इन्फेक्शन की वजह से उनको बहुत तकलीफ हुई, लेकिन ऐसा है बाबा का प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, कर्म भोग हमें यहाँ ही पूरा करना है, जो भी है, जैसे मेरे 5 ऑपरेशन हुए हैं, 10 साल के अंदर 5 बड़े ऑपरेशन हुए हैं, एक बार मैं वेंटिलेटर पर थे 8 दिन तक, ऐसा तबीयत बहुत, दोनों फेफड़े के अंदर पानी भर गया था, और दादियां आके दृष्टि दे के गई थी, अब जिससे लगता था कि थ्रू होएंगे कि नहीं होएंगे, लेकिन श्री बहन ने भी हिम्मत रखी थी, और उस समय किसी ने कहा, किसी ने आपके ऊपर जादू मंत्र किया है उस गाड़ी के नीचे मिर्ची और नींबू डाले हुए थे, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं निकाल दो जो डाले हैं, तो इस प्रकार से हमारा स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहा, कितने स्पाइन का ऑपरेशन हुआ, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ, हार्ट का ऑपरेशन, वाल्व का ऑपरेशन हुआ, तो फ्रैक्चर का हिप रिप्लेसमेंट, मेरा ये लेफ्ट हिप पूरा रिप्लेस किया हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि, और मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरी तबीयत अच्छी नहीं, आज भी मैं उतना ही काम करता हूँ, और बाबा को जितना कराना होगा उतना कराएगा।
डॉक्टर साहब आपको याद है कि आपने कितने लोगों को जीवन दान दिया होगा? अंदाज
बस हमने कुछ नहीं हमने तो हमारा काम था ऑपरेशन करना और हमारी जो स्पेशलिटी ऐसी थी एक जमाने में कैंसर के डॉक्टर होना अच्छा नहीं था। जब मैंने कैंसर का स्पेशलिटी लिया तो कई लोगों ने कहा कि कहाँ ऐसा काम करोगे आप, लेकिन मुझे चैलेंजिंग सर्जरी करनी थी। तो जब मैं एमएस हुआ तो उस समय मेरे को हार्ट का सर्जन होना था, क्योंकि हार्ट की सर्जरी जस्ट शुरुआत हुई थी उस समय, और मैं 1.5 साल हार्ट के ऑपरेशंस हार्ट के डिपार्टमेंट में काम करता, हार्ट सर्जरी में, एक्सपेरिमेंटल सर्जरी में काम करता था, जहाँ डॉग लैब के अंदर हार्ट ट्रांसप्लांट करते थे, एक निकाल के दूसरा लगाते थे। तो इस प्रकार से, लेकिन उस समय में एमएस के अंदर फेल हो गया। तो बम्बई में उतनी कंपटीशन होती थी उस समय में कि आप एक बार फेल हो जाते हैं तो फिर आपको आपका चॉइस का एरिया नहीं मिलता है, क्योंकि दूसरा आपके पीछे का जो आदमी उसको मिलता है। तो फिर उस समय मैंने सोचा भी कैंसर में चले जाते हैं, क्योंकि वो भी बहुत चैलेंजिंग एरिया है। तो इस प्रकार से मैं कैंसर के डिपार्टमेंट में गया और मैं समझता हूँ मुझे अच्छा ही लगा, क्योंकि मैंने पूरा डेवलपमेंट देखा। एक जमाने में कैंसर की ट्रीटमेंट ज्यादा नहीं थी, उस समय कीमोथेरेपी दाखिल हुई, आस्ते आस्ते हमने हर डेवलपमेंट देखा पूरा का पूरा, और आज हम सब स्टेट ऑफ द आर्ट काम कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अभी तो सुपर स्पेशलिटी हो गई, हर आदमी एक एक भाग का ऑपरेशन करता है, कोई खाली गले का करता है, कोई खाली फेफड़े का करता है, कोई लीवर का करता है, कोई खाली किडनी का करता है, कोई खाली कोलन का करता है। हम जब ट्रेन हुए तो सब करते हैं, और आज तक मैं कुछ भी कोई भी भाग का ऑपरेशन कर सकता हूँ और अच्छी तरह से कर सकता हूँ। तो और जब मैं शुरू में अच्छे 30-35 साल के पहले मैं बायनोक्यूलर लूप्स हुआ करता था, मैंने सब डबल 3.5 टाइम्स बिगर दिखाई पड़ता, तो ऑपरेशन करना बहुत ईजी होता था। तो लोग हंसते थे कि आप ये क्यों पहनते हैं, मगर उनको पता नहीं था कि मुझे अच्छा दिखाई पड़ता है उसके बाद। तो अभी सब पहनते हैं, खास करके जो माइक्रोवैस्कुलर सर्जन से वो पहनते हैं। तो कुछ चीज ऐसी है कि आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी जब भी आती है थोड़ी महंगी होती है, वो लेनी और उसको वापरना है।
आपने कितने ऑपरेशन किए होंगे?
अभी तो कभी काउंट नहीं रखा, क्योंकि हम कभी कभी क्या होता है अस्पतालों में हम जब करते हैं तो टीम वर्क होता है, तो मेजर पार्ट आप करते हैं, बाद में दूसरा कोई करता है, कोई पेज खोलता है, आपको बुलाता है कि आके करो, तो इस प्रकार से
टीम वर्क।
हाँ, तो उस अच्छा एवरेज आप समझे ना, तो करीब 500-600 ऑपरेशन साल में होते थे,
साल
कम
में।
से कम कम से कम तो,
आज कितने हम भाग्यशाली है। और सचमुच डॉक्टर साहब को मैंने बोला, उन्होंने हाँ कर दिया, क्योंकि मुंबई में थे, तो उन्होंने कहा आप आ रहे हैं तो हमारे लिए टाइम देना, तो बोला जरूर देंगे। तो पूछा भी नहीं किसका क्या है कुछ नहीं, लेकिन ये सब डॉक्टर साहब जूनागढ़ से करीब करीब 400 लोग है, बीना बेन हमारी नेहा बेन की सिस्टर, और ये पूरा उनका टीम है। और दूसरा ग्रुप कहाँ से है? एक पूना से है, सुनीता बेन है ना, और तीसरा दिल्ली का। ये तीन ग्रुप इसमें शामिल है, लेकिन बड़ा ग्रुप इनका जूनागढ़ का।
मैं मेरा सौभाग्य समझता हूँ कि हमारे गुजरात के भाइयों से मिलना हुआ।
तो गुजराती में दो शब्द बोलो।
तमारो जितलो आभार मानू एटलो ओछो छे।
तो डॉक्टर साहब और किसको पूछना है? बिना बेन थैंक यू करना है? आपके लिए खास डॉक्टर साहब आए, देखो।
अच्छा, ये तो हमारी नेहा बेन की
बहन की बेन।
अच्छा, मैंने आपको जाना नहीं था, चेहरे से परिचय चलता है। हमारा नेहा बेन से बहुत स्नेह है, क्योंकि हम उनके एरिया में अभी
गांव देवी में, फिर गुलजार दादी से मिलना। और ये तो डॉक्टर साहब ये बहुत ही अच्छी मीटिंग रही, और सब लोग बहुत ही इतना ध्यान से इतना प्यार से सुन रहे, और हमारे जीवन के लिए जीवन के लिए एक सीख मिली, डरना नहीं घबराना नहीं, लेकिन अवेयरनेस मतलब जागरूक रहना है तो ये हमारा जो लाइफ है बहुत इजीली, और ऑपरेशन होते जाते, ऐसे नहीं कि डॉक्टर होते तो ऑपरेशन नहीं होते, सबके होते, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन ये संगम युग है वो खुशी खुशी से बिताना है, स्वयं परमात्मा हमें मिले, वो सुप्रीम सर्जन है हा? और उनके जो हम लोग सारे इंस्ट्रूमेंट है, तो जो समय मिला है हमें थोड़ा सा उसको पूरा सफल करना है। और डॉक्टर साहब आज हमारे यहाँ अव्यक्त मिलन है, शाम को जैसे बाबा को मिलते हैं ऐसे सब मिलन मनाते हैं हम लोग, यह सिस्टम बनाया है पूरा, हमारे गोविंद भाई बहुत ही अच्छा सिस्टम बना के रखा है। तो ये बहुत अच्छे अनुभव सभी को होते हैं, जो अभी बाबा नहीं आते तो बाबा से जैसे अनुभव होते हैं वैसे सबको होते हैं। तो आपको सबके तरफ से बहुत 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 धन्यवाद, सब ताली बजाइए।
बाबा ने सेवा का निमित्त बनाया, इतना दुआओं का नसीब बिन मिला, बहनों की जो सेवाएं की है बहुत प्यार उनसे हमको मिला है। कोई भी भाग में जाते हैं, चाहे नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, चाहे हम मैसूर जाएं, चाहे हम धर्मशाला जाएं, चाहे चंडीगढ़ जाएं, चाहे कहीं भी जाएं,
विश्व में, यहाँ इंडिया की बात नहीं, सारे विश्व में तो कहीं भी जाए आपको सब जानते हैं।
यूरोप में तो कई बार गया, दादी जानकी का तो ऐसा एक आग्रह था कि मैं कभी लंदन को क्रॉस करके अमेरिका नहीं जा सकता हूं जब तक दादी को ना मिलूं। तो हर समय जब भी अमेरिका गया तो दादी को मिला, और दादी हमेशा अच्छी सेवा लेती थी हमसे, हमारा भाग्य बनाती थी। और दादी ने जितना प्यार दिया है हमको बहुत सुंदर। एक बात मैं बताऊं, हम दादी के साथ, गुलजार दादी के साथ अमेरिका जा रहे थे, तो हम लंदन में रुके थे, और दादी जी को उस समय एक इनर स्पेस नाम की इनर स्पेस बनाना था। हाँ। तो करीब कई दुकान, रीजन स्ट्रीट नाम की एक स्ट्रीट है लंदन के अंदर जहां सब बहुत एक्सपेंसिव कपड़े और ये सब मिलता है, और वहां उस समय दो दुकान हमें ऑफर हुई थी कि आप ले लो। तो दादी जी ने कहा गुलजार दादी आएगी तब जाके बताएगी वाइब्रेशंस कौन से दुकान के अच्छे, वहां जाके हम बनाएंगे। और दादी जी को लेके गए, तो रिजन स्ट्रीट में जब मैं चलता था स्ट्रीट के ऊपर, तो मुझे मेरा 25 साल के पहले का चलना याद आया। वहां मैं कपड़े खरीदने जाता था, और इस समय हम सफेद कपड़े में दादी जी के साथ दुकान में कहीं इनर स्पेस अनुभव करने के लिए, बनाने के लिए जगह का वाइब्रेशंस देखने जा रहे थे। तो बहुत ऐसा अनुभव होता था कि, और दादी जी के साथ एक बार शाम को गुलजार दादी को पूरा लंदन दिखाने के लिए जानकी दादी लेके गए, तो मुझे कहा आप भी चलो हमारे साथ। तो उस समय उनके साथ में पूरा लंदन साथ में घूम के देखा गाड़ी का, तो बहुत सुंदर लगा।
ओम शांति। आज हम सभी का भाग्य कहो, पद्म पदम भाग्य कहो, आज हमारे बीच में हमारे आदरणीय और हम सभी के बहुत बहुत दिल के अंदर, जिसने सारे ब्राह्मणों के, ब्राह्मण परिवार के अंदर आपने जो स्थान बनाया है, ऐसे हमारे परम आदरणीय डॉक्टर अशोक भाई मेहता जी, जो आज हम सभी को कितना गहराई से, जब हम एक एक बात सुनते थे सुभाष भाई जो भी पूछते थे, और इतना दिल से आप सुनाते थे, जो लगता था वो जब आपने जो अनुभव किया वो अनुभव आपके अनुभव के आधार से हम सभी को वो हो रहा था, हमें भी लगता था हम भी दादी के साथ है, हमें भी लगता था हम भी बड़ी दादी के साथ है, यानी कि आपके जो दिल के भाव थे वो इतने गहरे थे तो हमारे दिल में उतर आए। तो आपका सारे बच्ची में आने वाले खास जूनागढ़ सब जोन के भाई बहने, पुणे के भाई बहने और दिल्ली से आए हुए सभी भाई बहनों के तरफ से बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। ओम शांति।